कुछ देर पहले ही अर्जुन अमरजीत जी को लेकर आया था। इस वक्त सब लिविंग रूम में ही बैठे थे। नेहा का 7वां महीना चल रहा था। लंच के लिए वो भी रूम से बाहर आई हुई थी और हॉल में ही बैठी थी, पर किसी से बात नहीं कर रही थी। इतना कुछ हुआ था पर ना तो निया ने अर्जुन या किसी से कुछ पूछा और ना ही किसी ने उसे कुछ बताया। शान को देखते ही बाहर खड़े गार्ड साइड हो गए तो वो सीधे अंदर चला आया। कदमों की आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। शान को सामने देखकर तीनों चौक से गए। अर्जुन उठकर खड़ा हो गया और हैरान परेशान निगाहों से शान को देखते हुए बोला, शान तुम इस वक्त यहाँ? कुछ अधूरे काम पूरे करने थे, कुछ गलतियां सुधारनी थी और किसी की अमानत वापस उसे लौटानी थी, तो आना पड़ा। शान का गोलमोल सवाल सुनकर अर्जुन कुछ परेशान हो गया। वहीं अमरजीत जी ने मुस्कुराकर कहा, आप वहां क्यों खड़े हैं बेटा, आइए हमारे पास बैठिए। शान ने अब अमरजीत जी को देखा और फिर उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने ब्लेजर के अंदर के पॉकेट से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें अमरजीत जी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपकी कंपनी और शेयर्स वापस आपके और अर्जुन के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। मेरी वजह से आपका जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी कर चुका हूँ। आपका ऑफिस जैसा आप छोड़कर आए थे वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं किए हैं। बस स्टाफ में कुछ पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे नजर आएंगे आपको, क्योंकि पीठ पीछे छुरा घोपने वालों को कंपनी से निकाल दिया है मैंने और उनकी जगह नए टैलेंट को मौका दिया है। कंपनी को वापस पहले वाली जगह पर पहुंचा चुका हूँ। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब मेरा वहां कोई काम नहीं। तो अब से आपकी कंपनी आप खुद संभालिए और आगे से धोखेबाजों से जरा सावधान रहिएगा। शान की बात सुनकर अर्जुन शॉक था। वहीं अमरजीत जी के लबों पर हल्की मुस्कान कायम थी, जैसे वो सब पहले से ही जानते थे। और सच भी था, क्योंकि उनके मैनेजर से उनकी बराबर बात होती थी और वहां से उन्हें सारी खबर मिल जाती थी। अमरजीत ने पेपर्स को एक नज़र देखा, फिर शान को देखकर मुस्कुराकर बोले, हम सब पहले से जानते हैं, आपने जो काम कंपनी की बेहतरी के लिए किया वो काबिले तारीफ है। बिजनेस के मामले में आप हमसे भी ज्यादा काबिलियत रखते हैं। आपको कंपनी हमें वापस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमने अपनी बेटी को दिया था। आपकी बेटी के पति में इतनी काबिलियत है कि वो खुद से उसके लिए एक नई कंपनी खड़ी कर सकता है, और नई की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो भी मेरा है उस पर उसका बराबर का अधिकार है, तो उसे उसके डैड से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। इस कंपनी को आपने अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो इस पर आपका हक है और आपसे बेहतर कोई इसे नहीं संभाल सकता। मैं जानता हूँ पास्ट में एक गलतफहमी की वजह से मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, जिसका मुझे पछतावा है, और आपसे छीनी कंपनी इज्जत के साथ आपको लौटाकर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। हमने तो कभी आपको दोषी माना ही नहीं बेटा, फिर माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। जो हुआ उसमें अगर किसी की सबसे ज़्यादा गलती थी तो वो हम थे। हम अपने दोस्तों और दुश्मनों में फ़र्क नहीं कर सके। सांप को दूध पिलाया और उसने अपने जहर से न सिर्फ हमारी ज़िंदगी को ख़राब किया, बल्कि आपके खुशहाल परिवार में भी जहर खोल दिया। अगर उस वक्त हमने सुभाष पर शक ना किया होता तो इतना कुछ हुआ ही नहीं होता। इसलिए गलती हमारी थी जिसकी सज़ा हम सालों से भुगत रहे हैं। आपने जो वही किया जो आपकी जगह कोई और भी होता तो वही करता, इसलिए हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अमरजीत जी ने पेपर्स ले लिए और शान को सीने से लगा लिया। शान ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद उनसे अलग होते हुए बोला, मैं जिस काम के लिए आया था वो हो गया, तो अब इजाज़त दीजिए अंकल। अंकल नहीं, डैड कहिए, आप हमारे बेटे के साथ दामाद भी हैं और अभी आपको जाने की इजाज़त नहीं है। आए ही हैं तो हमारे साथ लंच करके जाइए। जिस दिन इस घर की बेटी के साथ इस घर का दामाद बनकर आऊंगा उस दिन आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा डैड, पर अभी इजाज़त दीजिए। शान की बात सुनकर अमरजीत जी ने मुस्कुराकर आगे कहा, दामाद से नहीं, हम तो अपने बेटे से कह रहे हैं, हमारे साथ बैठकर लंच करके जाए, हमें अच्छा लगेगा। शान अब इनकार नहीं कर सका और उसने सहमति में सर हिला दिया। फाइनली अमरजीत जी और शान के बीच सब ठीक हो गया था। शान अपनी ये गलती सुधार चुका था। अर्जुन अब शान के पास चला आया और उसको गले से लगाते हुए मुस्कुराकर बोला, डैड के गले लग ली, अब जरा मेरे भी गले लग जाओ। कितने साल हो गए अपने यार को गले लगाए। अर्जुन की बात सुनकर शान ने भी उसकी पीठ पर अपनी बाहों को कस दिया। दोनों के चेहरे पर सुकून के भाव थे और लबों पर हल्की मुस्कान। आखिर सालों बाद दो दोस्त मिले थे तो खुशी तो होनी ही थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने शान से दूर हटते हुए सवाल किया, आरवी के बारे में क्या सोचा है? काफी नाराज और दुखी है वो। जानता हूँ, पर तुम उसकी चिंता मत करो। नाराजगी मेरे वजह से है तो कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं अपनी नाराज बीवी को जल्दी ही मना लूंगा। शान की बात सुनकर अमरजीत जी और अर्जुन दोनों ही मुस्कुरा दिए। शान का जिद्दी नेचर दोनों ही जानते थे और अगर उसने कह दिया तो मतलब अब आरवी को मनाकर ही रहेगा। यही सोचकर दोनों निश्चिंत हो गए। सबने साथ में लंच किया। जहां तीनों के बीच बातें हो रही थी वहीं निया चुपचाप बैठी लंच कर रही थी। वो भले बार बार शान को देख रही थी पर शान ने गलती से भी उसकी तरफ नहीं देखा था। लंच के बाद वो दोनों से इजाजत लेकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया, जहां रेहान पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। आरवी के फैसले के बारे में न सिर्फ उसे बल्कि लक्ष्मी को भी पता चल चुका था। रेहान इसी बारे में शान से बात करने आया था। कुछ देर उनकी बातें चली फिर वो काम में लग गए। रश्मि भी उनके साथ ही थी और उसे ये देखकर अच्छा लगा कि शान ने आरवी के फैसले का सम्मान किया और अब अपनी गलतियों को सुधारकर उसको मनाना चाहता है। शाम को फ्री होकर वो आरवी से भी मिली। कुछ देर उनकी बातें चली, फिर रश्मि घर चली गई। रात के 10 रहे थे। शान अपने काबिन से अटैच्ड अपने पर्सनल रूम में इजी चेयर पर बैठा था और सामने टेबल पर शराब की बोतल और ग्लास रखा हुआ था। एक्चुअली सारा दिन तो जैसे तैसे निकल गया, पर अब अंशु और आरवी के बिना रात थी कि पहाड़ सी लग रही थी। न नींद आ रही थी न चैन मिल रहा था, बहुत बेचैन था वो, इसलिए शराब लेकर बैठा था पर पी नहीं थी। कुछ देर वो बोतल को घूरता रहा, फिर अपना फोन उठाकर आरवी को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ बीते दिनों आरवी शान के पास ही सोती थी, तो उसको उसकी मौजूदगी की आदत सी हो गई थी। अब उसके बिना उसको नींद नहीं आ रही थी। अंशु उसके बगल में सो रही थी और आरवी काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे वो शान से रूठी थी वैसे ही शायद उसकी नींद उससे रूठ गई थी। गुस्से में शान को छोड़कर तो आ गई थी, पर जहन में ना चाहते हुए भी शान का ही ख्याल छाया हुआ था। उसने घर छोड़ दिया ये बात तभी से उसको परेशान किए हुए थी। कहाँ होगा अभी, कुछ खाया होगा या नहीं, ये चिंता सता रही थी उसे, जिसे वो बार बार अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी। आरवी अब भी शान के ही बारे में सोच रही थी, जब अचानक ही उस सन्नाटे में उसके फोन की रिंग की आवाज गूंज उठी और आरवी चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने तुरंत ही दिगाहें फोन की तरफ घुमाई। स्क्रीन पर शान का नाम देखकर आरवी पहले तो चौंक गई, फिर कहीं अंशु ना जाग जाए ये सोचकर उसने जल्दी से कॉल रिसीव की और हल्की बेरुखी से बोली, क्यों फोन किया है आपने इस वक्त मुझे?
दूसरी तरफ मौजूद शान के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए उसे देखकर। उसने चेयर से सर टिका लिया और आंखें बंद करते हुए बोला, नींद नहीं आ रही, शराब पीने की तलब हो रही है। फिर कुछ पल ठहर कर आगे बोला, याद आ रही है तुम्हारी। शान की बात सुनकर आरवी ने हल्की बेरुखी और गुस्से से कहा, मेरी याद आपको कभी नहीं आ सकती, तो ये झूठ तो बोलिए ही मत, और अगर शराब पीने की तलब लग रही है तो जाकर शराब पीजिए, मेरी नींद क्यों हराम कर रहे हैं। सो तो नहीं रही थी तुम, दो ही रिंग में फोन उठा था, मतलब जाग रही थी। शान की बात सुनकर आरवी चुप ही रही, क्योंकि सच ही कहा था उसने, जाग ही तो रही थी वो। शान ने कुछ पल बाद मायूसी भरे स्वर में कहा, आरवी शराब पीने की तलब लग रही है पर पी नहीं सकता, मिलने की इजाज़त तो है नहीं, कुछ देर तुमसे बात कर सकता हूँ? आरवी ने तुरंत ही इनकार करते हुए सख्त लहजे में कहा, नहीं, शराब पीनी है तो शौक से पीजिए, पर मुझे परेशान मत कीजिए। कैसे पी लूँ शराब, वादा किया है तुमसे कि शराब हाथ नहीं लगाऊंगा। शान की बात सुनकर आरवी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह तो मुझसे किए वादे की इतनी परवाह कब से हो गई आपको, पहले भी कई बार वादा तोड़कर शराब पी चुके हैं, तो फिर से पी लीजिए, ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरवी के लहजे में गुस्सा उतर आया था। उसकी बात सुनकर शान ने गंभीरता से कहा, जानता हूँ पहले वादा तोड़ चुका हूँ और साथ ही तुम्हारा दिल भी तोड़ चुका हूँ, पर अब न तुमसे किया कोई वादा तोड़ना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारा दिल। अब तोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं मुझमें, जो था वो पहले ही टूटकर बिखर चुका है। आरवी की दर्द से सनी आवाज़ शान के दिल को आहत कर गई। अंदर कुछ चुपता हुआ सा महसूस हुआ और दर्द आंखों में लाली बनकर छा गई। उसने अपनी आंखें खोल दीं और सीधे बैठते हुए संजीदगी से बोला, तो मैं अपने प्यार से उसको वापस जोड़ दूंगा। हर टूटी चीज़ वापस जुड़ती नहीं, और अगर जुड़ती है तो दरार रह जाती है उसमें, न तो उसमें वो पहले जैसा प्यार रहता है और ना ही विश्वास। खैर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, नींद आ रही है मुझे, आरवी का बेरुखी भरा जवाब सुनकर शान ने ठंडी आह भरते हुए कहा। मेरे नींद और चैन उड़ाकर तुम्हें नींद आ रही है, तो जाओ सो जाओ। इतना कहकर शान ने फ़ोन काट दिया। हिकारत भरी नज़रें शराब की बोतल पर डाली, फिर उठकर जाकर बेड पर पड़ गया और फ़ोन में आरवी की फ़ोटो निकालकर देखने लगा। जाने कब उसकी आँख लगी, और दूसरी तरफ आरवी का भी यही हाल था। शान की बातें याद करते हुए उसकी आंखें नम हुईं। उसने अपने आंसू पोंछे और फ़ोन टेबल पर रखकर अंशु को अपनी बाहों में भरकर लेट गई। आधी रात बाद उसको कहीं नींद आई। टू बी कंटिन्यूड।